नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनकम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, कोहिमा हो या कच्छ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या कोहिमा से कच्छ तक हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। और वैसे तो हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक या उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं। ये एक परिवार की जो भावना है बहुत ही सुखद फीलिंग देती है कि हमसे कोई अलग नहीं है, जुदा नहीं है। तो एक परिवार का जो भी एक सदस्य होता है उसका सुख पूरे परिवार का सुख हो जाता है और एक परिवार के सदस्य का दुख पूरे परिवार का दुख हो जाता है। जैसे शरीर में अलग अलग अंग हैं, कोई छोटा अंग है, कोई बड़ा अंग है, छोटे से छोटे अंग का भी अपना महत्व है। यदि उसमें कोई तकलीफ हो जाती है तो उसकी तकलीफ पूरे शरीर की ही तकलीफ होती है, इसीलिए उस अंग को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, काट के फेंक नहीं देते, उस अंग को सुधारने की कोशिश करते हैं। और यही प्रयास लगातार समाधान भी कर रहा है कि चाहे वो व्यक्तिगत तकलीफ है, पारिवारिक तकलीफ है, सामाजिक तकलीफ है, आर्थिक है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है, वो सारी तकलीफें, सारी समस्याएं दूर हों और हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल समाज का निर्माण कर सकें। और इसकी शुरुआत हम सब खुद से कर रहे हैं, अपने परिवार से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसी आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, सचमुच सब कुछ बेहतर से बेहतर होता चल रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। प्रयास ही यही है कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो और सारे संसार की हमारी जो भाई बहने हैं सभी समस्याओं से मुक्त होकर सभी का जीवन खुशहाल हो। प्रयास समाधान का लगातार यही है और ये प्रयास सफल होता चल रहा है, इस बात से हमारे भी चेहरे की मुस्कान दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आदरणीय ब्राता जी का। ब्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक परिवार की जो फीलिंग है ब्राता जी, वो सचमुच बहुत ही अच्छी लगती है कि हम सब एक फैमिली के हैं, भले ही जाति, भाषा, रंग रूप और सारी वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक एकता का जो भाव है बड़ा प्यारा लगता है।
हाँ, ये तभी संभव होता है जब हम एक से जुड़ जाएं। हम एक की संतान हैं और हम सब आत्माएं हैं। ये एक ऐसा सुंदर विचार है जिससे एकता की भावना उत्पन्न होती है। और ये जो भेदभाव है काले गोरे, ऊंच नीच, बड़े छोटे, जाति पाति का, इससे मनुष्य ऊपर उठ जाता है। इन सब चीजों ने ही संसार में एक विकृति जैसी पैदा की है। लोग दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, ये काला है, ये गोरा है, और इससे बहुत सारी गड़बड़ पैदा होती है समाज में। देखिए, हमारे प्राचीन काल से आचार्यों ने भी इसके लिए बहुत सुंदर एक बातें कही। आदि शंकराचार्य आए, एक के ही सब स्वरूप हैं। ये उनका एक लक्ष्य ये भी था इसके पीछे, यद्यपि एक फिलोसफी है, ये सिद्धांत है कि सब एक हों, ये जो भेदभाव की दृष्टि है ये समाप्त हो जाए। और मुझे याद है बहुत सुंदर घटना शंकराचार्य जी के जीवन की, कि वो कहीं जा रहे हैं अपनी शिष्य मंडली के साथ और एक चांडाल दो कुत्ते लेकर आ रहा है। अब वो सामने से आ रहा है, तेजी से आ रहा है, और ये इधर से जा रहे। अब दुविधा हो गई, सबने चिल्ला चिल्लाया, हटो हटो, एक तरफ हटो, एक तरफ हटो। अभी वो तो हटे नहीं, चंडाल आ रहा, वो तो हटे नहीं, और चंडाल तो सामने आके रुक गया। अब इन्हें भी रुकना पड़ा, अब क्या करे, दुविधा की स्थिति थी। अब ये कहा, तुम हटते क्यों नहीं? कहा, आचार्य, आप तो कहते हो सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है, तो मुझ में भी तो वही है, फिर ये घृणा भाव क्यों? शंकराचार्य की आंखें खुल गई, और वहां से उन्हें स्वीकार किया कि ये मेरा गुरु है, और इतने में तो लोप हो गया। तो उनको आभास हुआ, ये कोई दिव्य शक्ति हमें सत्य का आभास कराने आई थी, कि जो बात केवल शास्त्रों में लिखी है, सिद्धांतों में है, वो जीवन में भी होनी चाहिए। कह रहे हो एक ही एक है और भेदभाव दुनिया भर का पाले हुए हो, तो सचमुच ये संसार एक परिवार है, हम एक के बच्चे हैं। और शिव बाबा ने आकर यही अवेयरनेस हम सबको दी है, तुम सब मेरी संतान हो, रूहें हो, सोल्स हो, आत्माएं हो, अब स्वयं का कल्याण करो, इस सोल कॉन्शियसनेस की फीलिंग में आ जाओ, तो सचमुच ये संसार एक परिवार होगा। और मैं सभी को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि सतयुग जब प्रारंभ होगा तो वहाँ की समस्त जो आबादी है, मनुष्य आत्माएं हैं, वो हैं देव आत्माएं, वो सब एक परिवार होता है। सतयुग के आदि में लगभग 9 लाख देवी देवताओं का वास है इस धरा पर, सब एक परिवार तुल्य रहते हैं, बिल्कुल परिवार। यद्यपि उनको अपने परिवार भी हैं, लेकिन सारा संसार उस समय ये 9 लाख का भी एक सुंदर परिवार है।
मतलब ये जो वसुध है वो टमटम की भावना है, शायद वहीं से चली
ये बस प्रारंभ से ही चली आ रही है, बहुत काल तक चलती रही। फिर ये भेदभाव प्रारंभ हुए, मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आया, तेरा मेरा ऊंच नीच भेद शुरू हुए और ये गड़बड़ हो गई। तो वास्तव में ये सोच के ही कितना मजा आता है कि इतना सुंदर परिवार एक, और वो भी हमारा।
जी जी जी।
तो इससे इस संसार में भी अगर हर मनुष्य ये सोचने लगे, पहले तो अपने परिवार के लिए सोचे, ये मेरा परिवार है, ये मेरे हैं, तो उनको एक गुड फीलिंग जाएगी। माँ बाप से बच्चों को, बच्चों से माँ बाप को, फ्रेंड्स को, भाई बहनों के बीच। और अगर हम ये सोचें ये सारा संसार हमारा परिवार है, तो सारे संसार को गुड फीलिंग जाएगी। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हम जाते हैं तो हमें कहते ही हैं, ये हमारा सीबीआई का परिवार है भाई, ये एसबीआई का परिवार है हमारा, ये फलानी चीज का परिवार है हमारा, ये इनकम टैक्स वालों का हमारा परिवार है। तो कहने तक तो अच्छी बात है, इस फीलिंग को हम बढ़ाए रखें तो सारे डिपार्टमेंट में भी एक गुड फीलिंग हो जाती है।
जी,
तो बहुत अच्छी ये चीज है, इसको हमें बढ़ावा देना ही है।
बिल्कुल, मतलब अपने परिवार में भी ये फीलिंग हो, डिपार्टमेंट में भी ये फीलिंग हो, यहाँ से तो हम शुरू करें ही, लेकिन विश्व के लिए भी ये फीलिंग जरूर हमारे मन में हो, क्योंकि परिवार की भावना में ब्रदर जी वो स्नेह, सम्मान और सहयोग, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और वाइब्रेशन कितने अच्छे हो जाते हैं, इसलिए सुखद बात बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ दिन पहले आपको याद होगा ब्रदर जी, हम पड़ोसी की बात कर रहे थे कि पड़ोसी यदि ऐसी चीजें कर जाता है जिसके कारण उसके लिए हमारी भावनाएं खराब हो जाती हैं, और ज्यादातर ऐसा हो जाता है। न केवल पड़ोसी की बात है, यदि हम कहीं पे काम भी करते हैं, वहाँ हमारा जो कोलीग है उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं हो पाता, वो छेड़ता रहता है।
बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल समस्या संसार में आती है। अनेक लोग अपने पड़ोसियों से तंग है, ऑफिसों में काम करने वाले डिपार्टमेंट में अपने साथियों से परेशान,
पुलिंग चलती है,
वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसी कारण ये गिरावट संसार में हो रही है। हमें बिल्कुल सब में प्यार बांटना चाहिए, सब हमारे हैं, कोई आगे बढ़ता है। देखिए, लोग जब बताते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ एक लड़का आईएएस हो गया है, तो भले ही स्कूल छोड़े हुए उसको 10 साल हो गए होंगे, फिर वो कॉलेजों में गया होगा, फिर और कुछ किया होगा, लेकिन वो परिचय में ये भी देंगे कि हमारे स्कूल के 5 लड़के आईपीएस हैं। हमारे एक आया अभी जिसकी कोचिंग है आईएएस वालों की, तो उसने बताया कि 132 लड़के सेलेक्ट हुए हैं अब तक हमारे इस कोचिंग सेंटर से आईएएस के लिए, तो बड़ा नशा उसको। देखिए, एक तरफ लेग पुलिंग की बात, एक तरफ ये खुशी कि हमारे यहाँ से इतने अच्छे पदों पर लोग पहुंचे हैं। तो ये भावना अगर हम सदा रख लें कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई आगे बढ़ रहा है, ये हमारे डिपार्टमेंट की अपनी शोभा है। हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, ये हमारे परिवार की शोभा है। हमारे पड़ोसी कोई बहुत अच्छे हैं, ये भी हमारी शोभा है। परिचय तो देंगे ना कि हम फलाने के घर के पास रहते हैं, तो देते हैं ये परिचय। तो वास्तव में हमें बहुत खुश होना चाहिए एक दूसरे को आगे बढ़ते देखकर, और इसमें हम भी आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे।
बिल्कुल, आपने कहा कि पड़ोसी का परिचय जरूर देते हैं। हम लोग ब्रदर जी गए थे वहाँ चेन्नई, कन्याकुमारी देखने के लिए जा रहे थे, तो जो हमें लेके जा रहा था टैक्सी ड्राइवर, वो बड़े नशे में था। वो कहता था कि जानते हैं रजनीकांत जी जो हैं वो मेरे पड़ोसी हैं। वो पड़ोसी के बाद से मुझे ये बात याद आ गई। लेकिन बताते थे जहाँ ये कार्य वाली बात आती, कार्य क्षेत्र की, वहाँ कई बार लगता है कि यदि पारिवारिक फीलिंग की जहाँ तक बात आती है तो सहयोग की बात आती है कि चलो आगे बढ़ने दो, जाने दो। लेकिन यहाँ कार्य क्षेत्र में ऐसा लगता है कि यदि मैंने अपने अवसर दूसरे को दे दिए, उन्हें आगे जाने दिया, तो शायद मैं वहीं रह जाऊंगा, पीछे हो जाऊंगा। इसलिए जितने अवसर मिल सकते मैं खुद हथिया लूं, खुद आगे बढ़ जाऊं।
देखिए, कर्म फिलोसोफी ये कहती है कि जो मनुष्य दूसरे को आगे बढ़ाता है वो कभी पीछे नहीं रहता। एक अवसर अपना कोई दूसरे को देता है, उसको जानना चाहिए उसके लिए 2 स्वर्णिम अवसर सदा मौजूद रहेंगे। और जो व्यक्ति दूसरे के अवसरों को हथियाता है वो जीवन में सफल भी नहीं होता, और उसे वो अवसर मिलने के बाद भी वो आत्मिक खुशी और शांति और संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इटर्नल कर्म फिलोसोफी को जानते हुए हमें कम से कम इतना तो चाहिए ही कि चलो हम दूसरों को अवसर न दें, लेकिन जो व्यक्ति अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, देखिए क्या होता है ऑफिसों के बीच, एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, एफिशिएंट है, सब कुछ, अब उसका नाम हो रहा है, जो बड़े अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं या जनरल मैनेजर है, वो भाई उससे खुश हैं कि वाह लड़का बहुत अच्छा काम करना, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे, वो प्रमोशन होगी उसकी। अब दूसरा सोचता है कि मैं इसे गिराऊं तो उसकी शिकायत करता है, लेकिन कई उच्च अधिकारी इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि लड़का योग्य है, ये गलत शिकायत कर रहे हैं, वो भी तो कोई ऐसे वैसे नहीं है ना, उनको अनुभव होता है। तो होता यह है कि वो आगे बढ़ जाता है और शिकायत करने वाले पीछे रह जाते हैं। और हमने ऐसा देखा हमेशा अपने संगठनों में, हम रहते हैं बड़े संगठनों में, कि दूसरों की शिकायतें करने वाले, गलत शिकायतें करने वाले कभी आगे नहीं बढ़े संसार में। संसार में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो योग्य है। योग्य व्यक्ति को कोई रोक भी ले तो दूसरा द्वार खुला रहता है, कुछ और चांस उसको मिल जाते हैं, क्योंकि उसके साथ गोल्डली ब्लेसिंग्स भी होती हैं।
तो कहते हैं हीरा कितनी भी कचरे में पड़ा हो
तो चमकेगा,
चमकेगा जरूर। इसलिए अपनी योग्यता पे भी ऐसे में विश्वास रखना चाहिए। पता जी, एक विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने आध्यात्मिक सिद्धांत की बात कही, यद्यपि आजकल उसकी उतनी चर्चा नहीं होती, कि एक से ही हम उपजे हैं। ऐसा कई संतों महात्माओं ने भी कहा कि एक से ही हम उपजे हैं, इसीलिए सब तरफ उसी का ही अंश है। एक सिद्धांत है शायद, लेकिन इसमें भी कई प्रकार के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। एक बात मुझे भी ख्याल आ रही थी, किसी संत ने, कोई संत रोटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता आया और वो रोटी उठा के भागने लगा, तो संत जी ने कहा अरे रुके रुकिए रुकिए प्रभु, मैं उसमें घी तो लगा देता हूँ, आप घी लगा रोटी खाइए। तो उनका भी भाव यही था कि परमात्मा है सभी में। तो क्या इस भाव को यदि हम मान लें कि सभी उस एक के ही अंश हैं, सब में परमात्मा ही परमात्मा है, तो क्या ये एकता वाली बात स्थापित हो सकती है, एक वसुधा अवस्था?
देखिए, ये सिद्धांत चलते आए लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ हुआ नहीं। हजारों साल से ये मान्यताएं संसार में रही हैं, लेकिन अब कुछ लोगों तक सीमित रह गई ये मान्यता। अब भगवान ने आकर एक सत्य बताया, ट्रुथ, कि तुम मेरे अंश नहीं, भगवान के अंश नहीं होते, वो तो बहुत सूक्ष्म है और अविनाशी है, अखंड है, उसके खंड होते ही नहीं, हम सब उसके बच्चे हैं। आत्माएं और परमात्मा दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, जो सभी आत्माओं में सुप्रीम है, परम है, उसको परमात्मा कहते हैं। अंतर यही है कि वो जन्म मरण में नहीं आता और सभी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आती रहती हैं। तो उसने हमें याद दिलाया तुम मेरी संतान और तुम सब आत्माएं हो, इससे एक परिवार बनता है।
बिल्कुल, मतलब ये वाली जो बात है कि उसके अंश हैं, वो वाली बात नहीं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं। ये फीलिंग रखने से हमें शायद एकता का भाव आ जाएगा। पता जी, एक चीज जब बात विशेष करके निकलती है, इसमें वैचारिक मतभेद इतने सारे हैं कि जो जिस मान्यता को लेके चल रहा है उसी मान्यता में बिल्कुल दृढ़ रहता है, तो फिर ये जो धार्मिक एकता वाली जो बात होगी वो फिर कैसे संभव होगी?
देखिए, वो तो केवल परमात्मा ही आके करते हैं। जब वो सबको ये याद दिलाते हैं कि चलो मान लो तुम उसके अंश भी हो, लेकिन आत्मा का असली स्वधर्म शांति और पवित्रता है, इसमें आ जाओ, तो जब हम मनुष्य आत्माएं इस स्वरूप में आ जाती हैं कि हमारा मूल धर्म शांति और पवित्रता है, उसके ये बाह्य स्वरूप है और धर्म, तो अपने मूल धर्म को पहचानने से धर्मों में भी एकता और समरसता आ सकती है।
बिल्कुल, मतलब इस मूल ज्ञान को हमें समझने की विशेष करके आवश्यकता है। आपको क्या लगता है पिताजी कि क्या ऐसी अभी संभावना दिखती है? क्योंकि अब जब हम समाज की ओर देखते हैं तो ज्यादातर हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए ही सोचता है, स्वार्थ स्वार्थ वाली ही बात सोचता है। हम ये सोचते हैं कि परिवार एक हो तो बड़ा अच्छा होगा। क्या लगता है कि ऐसी एक संभावना है कि हम फिर से सब एक होकर के रहें, प्यार से रहें?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी बुराई भी जब बहुत अति में पहुंच जाती है तो उसकी समाप्ति अवश्य होती है। जिसको कहते हैं लोग पाप का घड़ा भर गया तो फूटेगा अवश्य। तो ये जो एक विकृत स्वरूप संसार में दिखाई देता है धर्मों के बीच में, कि जिस धर्म का मूल अहिंसा था उसमें हिंसा ने प्रवेश कर लिया है, जहाँ प्रेम और सद्भावनाएं सिखाई जाती थी वहाँ घृणा और स्वार्थ और दुर्भावनाओं ने स्थान ले लिया है, जहाँ पवित्रता हर धर्म का एक आधार था वहाँ काम वासना चारों ओर एक गंदे नाले की तरह बहने लगी है, तो इसका अंत है ही, क्योंकि ये अति में हो गई है। ये बिल्कुल सिद्धांत ही अति के बाद उस चीज का अंत हो ही जाता है। तो अब परमात्मा एक नया संसार स्थापित करने के लिए यहाँ आ गए हैं, जिसमें एक ही सत्य धर्म होगा। और वास्तव में सत्य धर्म तो वही होता है जिसमें मनुष्य को इन बाह्य धर्मों का ज्ञान भी न हो, अपने मूल धर्म में ही व्यक्ति स्थित हो।
बिल्कुल। तो क्या ये सारी जो धर्म है वो नहीं रहेंगे?
हाँ, ये
का
तो,
मतलब क्या है?
बस और किसी धर्म का नाम नहीं रहेगा। देख लीजिए, मान लो हम बुद्ध धर्म को लें
जी,
अभी उसको एक समय हुआ है, अभी महात्मा बुद्ध से पहले तो बुद्ध धर्म नहीं था। अभी जैनियों से हमारी बहुत चर्चा होती है, कोई कहते हैं कि हमारा धर्म स्वामी महावीर ने स्थापित किया, उससे पहले तो नहीं होगा। कोई कहते हैं ऋषभ देव जी ने स्थापित किया, तो उनका क्या धर्म था, उससे पहले क्या था। और भी जो धर्म है, मान लो क्रिश्चियन धर्म है, अभी उनको लगभग 2000 साल हुए हैं, और उससे पहले तो उनका नहीं था। तो ये धर्म पहले थे भी नहीं और फिर रहेंगे भी नहीं, ये सत्य है। तो वो एक जो मूल धर्म है वो स्थापित हो जाएगा पुनः।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब एक में ही समाहित हो जाएंगे। और जो शायद आत्मिक धर्म की बात करते हैं, उस धर्म की शायद ज्यादा आवश्यकता है, और इसी को सभी पहचान के एक धर्म के और एक परमात्मा की छत्र छाया में आ जाएंगे। वो दिन कितना सुखद होगा बेटा जी, इंतजार रहेगा हमें।
बिल्कुल, ये हर एक व्यक्ति को सोचनीय है, विचारनीय है कि इन धर्मों का काल सबको पता है, फलाना धर्म इतने, ठीक है थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो उससे पहले क्या था। कोई कहेंगे वैदिक धर्म था, कोई कहेंगे सनातन धर्म था, लेकिन अब शिव बाबा ने स्वयं आके बता दिया कि उससे पहले क्या था। उसको जान लेने से ये बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती है।
जी जी जी, चलिए बहुत ही गूढ़ चर्चा है वैदिक धर्म पे, पुनः आपसे कभी चर्चा करेंगे। कल एक हमने मेल लिया था वैदा जी, आपको ख्याल होगा, हमारी बहन कोमल भगत जी ने भेजा था कि हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट कैसे जाएं। मैं उस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे जो भाई बहने हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में अभी अभी जुड़ते जा रहे हैं, उनके मेल भी आते हैं, फोन कॉल भी आते हैं कि हमें बहुत देर हो गया यहाँ आने में, तो वो कहते हैं कि अब हम कैसे अपने आप को शीर्ष पे ले चले। तो कहते जी इस विषय पे प्रकाश।
हाँ, विषय तो बहुत गुह्य है और हम इस पर डिटेल चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, जब कोई हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ता है, कोई 3 मास से जुड़ा, कोई 6 मास से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 2-4-5 साल से, तो उसे यहाँ आकर एक आत्मसंतुष्टि होती है और एक आवाज अंदर से निकलती है, पाना था सो पा लिया। ये हमारा नहीं, करोड़ों मनुष्यों का अनुभव है कि परम सत्य मिल गया, प्रभु मिलन होने लगा। केवल उसका मार्ग नहीं मिला, प्रभु मिलन होने लगा। तो हर व्यक्ति चाहता है अब हम भगवान की आज्ञा पर चले और अपनी स्थिति को महान बनाएं, परफेक्शन की ओर ले चलें। क्योंकि हरेक जो हमारे पास आते हैं उन्हें महसूस होता है कि योग अभ्यास में परमात्म मिलन का बहुत गहरा सुख मिलता है, इस सुख को हम बढ़ा दें। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो जाता है कि इस अच्छे अभ्यास से हमारे परिवारों की, व्यक्तिगत, बच्चों की, सबकी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। उन्हें ये भी आभास होने लगता है कि अभी हमें देवत्व की ओर चलना है। तो शिव स्वयं एक ऐसी दैवी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं जिसमें एक पूरा राज्य होगा, उसमें कोई विश्व महाराजन होगा, कोई राजा होंगे, कोई बहुत अच्छे पदों पर होंगे, कोई बहुत वेल्दी होंगे, कोई बीच के साधारण देवता होंगे, कोई पीछे वाले होंगे। संसार में जैसे आज भी भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, तो उसमें हर व्यक्ति जो यहाँ आ गया उसको एक कंपटीशन मिलता है कि तुम हाईएस्ट स्टेटस को प्राप्त करो। तो इसलिए हरेक की ये श्रेष्ठ इच्छा होती है कि हम बहुत आगे निकल जाए। उन्हें लगता है कोई 50 साल से ज्ञान योग कर रहा है, कोई 80 साल से कर रहा है, हमें 2-3 साल ही हुए हैं, अरे हम तो बहुत पीछे रह गए। ये बात हमें भी हुई थी जब हम आए, तो तब तो लगभग 29-30 साल हुए थे यज्ञ को स्थापित हुए, तो हमें लगता था अरे ये लोग 30 साल से साधना करते आ रहे हैं, हम पीछे रह गए, हमें भी कुछ करना चाहिए, तेज गति करनी चाहिए अपनी। फिर हमने देखा और जो बाद में हमारे पास आते रहे, जब 50 साल हो गए इस ईश्वरीय कार्य को, तो वो कहने लगे अरे 50 साल से साधना कर ली, हम तो बहुत देर में आए, हमें अब तेज करना, बोलो क्या करें, लास्ट सो फास्ट। तो ये लास्ट सो फास्ट का जो संकल्प है
बहुत पहले से चला रहा है,
पहले से ही चला रहा है। उसमें बिल्कुल शुरू में भी शुरू हुआ था कि जब शुरू हुआ यज्ञ कि भाई कोई 36 में आ गए थे, अब जो 38 में आए उन्हें लगा रहे हम लेट हो गए। तो ये चलता आ रहा है क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो सब कुछ अचीव करना चाहता है, और जहाँ सब कुछ भगवान से प्राप्त करने की बात हो वहाँ तो कहने ही क्या, मनुष्य लग जाना चाहता है उसमें। तो
इससे पहले क्या आप जाएं, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा आगे भी, जैसे आपने कहा 36-37 में जो आए उनको भी लगा तो, और आप जब आए तो आपको लगा, तो क्या ये क्रम चलता रहेगा आगे?
बिल्कुल, ये मनुष्य की टेंडेंसी है ना, उसकी नेचर है कि जब भी वो आएगा वो सोचेगा पीछे पीछे वाले बहुत आगे निकल जाएंगे, अब मैं कहाँ हूँ, बहुत बहुत देर हो गई है, तो चले तेज बढ़ाएं कदमों को। ये इच्छा अंत तक भी होती रहेगी। और शिव बाबा ने एक बहुत सुंदर रहस्य बता दिया है कि जो हमारी विजय माला है 108 की, जो हाईएस्ट स्टेटस वाले हैं, 108 मनुष्यात्माएं सारे संसार से, पहले जो सुप्रीम सत्ता है वो 8 को सेलेक्ट करती है, दे आर कंप्लीटली इक्वल टू गॉड ऐसा कहेंगे लास्ट में लोग उनको, ये 8 ही संसार के लिए भगवान है। भगवान तो देहधारी नहीं होता, पर लोग उनकी स्थिति को देख कर ये कह उठेंगे। उसके बाद 100 हैं, तो ये टोटल 108 आत्माओं को सेलेक्ट करते हैं स्वयं भगवान, और जो लेट आने वाले वो भी सोचते अरे हमारा नंबर निकल तो नहीं गया, ये अवसर छूट तो नहीं गया। तो शिव बाबा ने जो सुप्रीम टीचर है एक बहुत सुंदर बात कही है कि लास्ट तक भी 2-3 सीटें खाली रखी जाती हैं, ताकि कोई भी तेज गति से दौड़कर आए और वो उन सीट को प्राप्त कर ले। इसलिए देखिए ये गॉडली स्टडी है, ये गॉडली कार्य है, और परमात्मा के पास वो न्याय रहता है, उसे कोई शिकायत नहीं कर पाएगा कि हम देर से आए तो हमें मौका नहीं था,
सीट नहीं रखी हमारे
रखी
लिए।
थी भाई, अब प्राप्त करना तुम्हारा काम है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो भी जब भी ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें तब से एक सुंदर प्रयास की ओर बढ़ना चाहिए, और इस पर हम डिटेल चर्चा करना ही चाहेंगे। मेरी भी इच्छा होती है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे सामने जब लोग मिलने आते हैं तो कई लोग पूछते रहते हैं, छोटे बहुत पूछते हैं, कन्या या कुमार,
जोश होता है,
यंग लोग। अभी एक मैं था अपने किचन में गया तो एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का आया, कहा मेरी यहाँ स्थिति बहुत आनंदित हो गई है, अब मैं ये चाहता हूँ ऐसी वहां भी रहे। लेकिन 10वीं क्लास का, 14 साल उसकी उम्र थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अब जब तुमको इच्छा ही है तो तुम्हारी ऐसी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी ही। तो मनुष्य को एक हाईएस्ट अचीवमेंट के लिए अपने जीवन के कुछ तो नियम बनाने चाहिए। शुरू में कम से कम 5 नियमों में अपने को बांध लेना चाहिए। योग अभ्यास पर भी बहुत अच्छी अटेंशन देना चाहिए कि हमारा योग अभ्यास कैसे तेजी से बढ़े। अमृत वेले उठकर परमात्मा से वरदान लेना और फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनना, इन पर विशेष अटेंशन देना चाहिए। साथ ही साथ जीवन की कुछ जो इम्पोर्टेंट धारणाएं मुरलियों में आती हैं उनको अलग से नोट कर लेना चाहिए। जैसे तुम्हें संपूर्ण निरहंकारी बनना है, तुम्हें संपूर्ण संतुष्ट होना है, तुम्हें बहुत सरल चित्त होना है, तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है, तुम्हें अपने चित्त में सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है। ये मैंने 5 धारणाएं बताई। ऐसी धारणाओं को नोट करके उनपे अच्छा चिंतन, अच्छा पुरुषार्थ, यानी उनको अपने जीवन में लाने का संपूर्ण प्रयास, और अपने योग के चार्ट को 1 घंटे से बढ़ा के 2 से 4, 4 से 6 ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई भी कभी भी आने वाला व्यक्ति, इवन जो पहले भी आए हैं आपसे 20 साल पहले, वो भी इन पर अगर ध्यान दे तो बहुत आगे निकल सकते हैं।
दादी जी, जैसे कोमल है या आपने कहा वो 10th का जो बच्चा आया है वो, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं जिन्हें बहुत उमंग होता है, उन्हें लगता है यदि मुझे लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट जाना है सब छोड़ छाड़ दो, क्योंकि मुझे पूरी तरह फोकस होना होगा, 8 घंटे योग करना होगा या बहुत अच्छी साधना करनी होगी, बहुत सेवाएं करनी होगी, तो मैं सब छोड़ता हूँ, ये लगता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या कहेंगे?
नहीं, सब कुछ छोड़ के तो मनुष्य बोर हो जाएगा, सब कुछ परमात्म अर्पित करके पुरुषार्थ करना होगा। ये विषय, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं होगी, छोड़ना तो उन्हें होगा जो बुराइयां हैं, जो हमारे मार्ग में बाधक हैं। काम धंधा, पढ़ाई, नौकरी धंधा, ये बाधक नहीं है, ये तो मनुष्य के लिए एंजॉयमेंट है, उसके विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
लेकिन इस एज में कहता जी, मुझे लगता है ये बात समझ में नहीं आती। उन्हें लगता है कि नहीं, एक रास्ते पे चलना है और यहाँ से अब विमुख हुए, छोड़े और इस रास्ते पे चलना है। नहीं, फीलिंग ज्यादा रहे।
यही हम इन्हें समझाने की कर रहे हैं कि छोड़ने की बात नहीं, सब कुछ करते हुए और क्या क्या अभ्यास करें जो हम पहले भी चर्चा कराए हैं, उसको लेकर आगे बढ़ना है।
जी जी जी, वैसे तो बहुत गोही चर्चा है दादा जी, और सचमुच लगातार इस पे प्रकाश की आपसे आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि सुंदर प्रकाश इस पे आपसे प्राप्त होता रहे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये तो एक बहुत अच्छी लगन की बात है कि जिस पथ पे हमने कदम रखा, उस पथ के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना ये हमारा ध्येय होना चाहिए और उसके लिए बीसों नाखूनों का जोर लगा देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, तभी हम शीर्ष पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि तो कोई भी चीज हमें मेहनत से ही प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, ये बात भी है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी हमें जरूर सिखाता है कि कैसे अपने कार्यों में, अपने स्टडी में, सब में बैलेंस रखते हुए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए सबको छोड़ छाड़ के जंगल की ओर निकल जाने की या गहरे वस्त्र पहन लेने की, श्वेत वस्त्र पहन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात तो मन और बुद्धि की है, उसके लगन की है। यदि अंदर लगन लगी हुई है तो हम हर कार्य करते हुए भी उस परम सत्ता का ध्यान कर सकते हैं, उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आपने कई संतों का एग्जाम्पल सुना होगा। कबीर दास जी गृहस्थ में थे, अपना कार्य करते हुए भी वो एक के धुन में लगे रहा करते थे। कई ऐसे संत हुए हैं जो बहुत ही छोटे छोटे कार्य किया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी लगन ऐसी थी कि वो आज भी याद किए जाते हैं, उनके बारे में सबको पढ़ाया जाता है। तो यदि हम भी अपने गृहस्थ में रहते हुए ये चाहें कि हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आए, या अध्यात्म के शीर्ष पे पहुंचें, या परमात्मा जो हमें करने को कह रहे हैं हम वो करें, तो ये सब सहज संभव है। बात है अंतर की समर्पणता की, अंतर की लगन की। यदि हम ये कर लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। विषय बहुत गोहिया है मित्रों, आप भी विचार कीजिएगा। दादा जी से भी आगे इस विषय पे हम प्रकाश लेते रहेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।